ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच, स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः श्मयमानस्तमभ्याह तद्वागामृतयन्त्रितः। श्रीब्राह्मण उवाच, वेदेद मसुरश्रेष्ठ। श्रीब्राह्मण उवाच, वेद इदम् असुरश्रेष्ठ, भवान् ननु आर्यसम्मतः, इहा उपरमयोः नृणां पदानि अध्यात्मचक्षुषा। श्रीब्राह्मण उवाच, वेदेदमसुरश्रेष्ठ, भवान्नन्वार्यसम्मतः, इहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा। वेदेदमसुरश्रेष्ठ, भवान्नन्वार्यसम्मतः, इहो परमयो नृणां इहो परमयो नृणां इहो परमयो नृणां इहो परमयो नृणां। ह्रस्व और दीर्घ में अंतर होता है, ध्यान रखना चाहिए। इहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्म चक्षुषा, वेदेदमसुरश्रेष्ठ, भवान्नन्वार्यसम्मतः, इहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा। श्री नारद उवाच, स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयन्त्रितः। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज भक्त प्रहलाद महाराज इस प्रकार से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए भक्त प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार उत्तर दिया। अब आप लोग पीछे से बोलिए। श्री ब्राह्मण उवाच, श्री ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वेद ठीक से जान लो, इदम ये समस्त चीजें असुर श्रेष्ठ, हे असुरों में श्रेष्ठ भवान आप ननु निसंदेह आर्य सम्मतः, जिनके कार्य सभ्य मनुष्यों द्वारा अनुमोदित होते हैं। इहा प्रवृत्ति का उपरमयो ह्रास का नृणाम सामान्य लोगों की पदानी विभिन्न अवस्थाएं अध्यात्म चक्षुषा दिव्य आँखों के द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, साधु ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य भक्त प्रहलाद महाराज, आप जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं, क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, और इस प्रकार आप कर्मों की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। तात्पर्य, भक्त प्रहलाद महाराज जैसा परम भक्त भक्ति में सेवा में अपने शुद्ध दृष्टि के कारण अन्य व्यक्तियों के मन की बात जान सकता है। उन जैसा भक्त दूसरे पुरुषों के चरित्र का अध्ययन बिना किसी कठिनाई के कर सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। श्रीमद्भागवतम का सप्तम स्कंध अध्याय 13, इसमें सन्यासियों के धर्म का निरूपण किया गया। आप पहले से सुन चुके हैं, परीक्षित युधिष्ठिर महाराज नारद जी से वर्णाश्रम के विषय में सुनना चाहते हैं। वर्णाश्रम के क्या महिमा है, क्यों इसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं और वर्णाश्रम की महिमा बतला रहे हैं कि बिंदते यत् पुमान, बिंदते परमं पुमान। वर्णाश्रम ऐसी व्यवस्था है कि इसके आचरण से व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पहले सामान्य रूप से धर्म का निरूपण किया गया सभी वर्ण और आश्रम के लिए। अब इसके बाद जहां आश्रम की बात है, तो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के आचरण को बतलाए। पहले ब्रह्मचारी के आचरण को, उसके कर्तव्य को, फिर वानप्रस्थी के कर्तव्य को, और इसके बाद इस अध्याय में सन्यासी के आचरण को बतला रहे। आप लोग सन्यासी के कर्तव्य के विषय में, उसके आचरण के विषय में आप लोग सुन चुके हैं। सन्यासी से अपेक्षित है कि वह सन्यास के चिन्ह को धारण करे। ये सन्यास का क्या चिन्ह है? दंड और कमंडल। दंड कमंडल लोग कहते हैं, त्रिदंड और कमंडल जलपात्र, ये चिन्ह है। तो ऐसी अपेक्षा रखी जाती है कि सन्यासी को अपना चिन्ह धारण करना चाहिए, त्रिदंड धारण करना चाहिए, जलपात्र धारण करना चाहिए, और अच्छा यह होगा कि इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी के लिए संग्रह का विधान नहीं है, परिग्रह का विधान नहीं। उसके धर्म के विषय में लिखा गया है कि उसका स्टोर हाउस बस पेट है। अब जितना रखना हो पेट में रख लीजिए, अब ये नहीं कि कुछ आगे के लिए स्टोर कर लें, यह धर्म नहीं है। और है, कोई आपत्काल है तो जिस चीज का त्याग कर चुका है तो देह निर्वाह के लिए उसको भी स्वीकार कर सकता है, नहीं तो सामान्यतः अब जिस चीज का त्याग कर दिया, जिस सुविधा का त्याग कर दिया, उसको फिर से स्वीकार करने का विधान नहीं है। तो चिन्ह धारण करना चाहिए। और एक अवस्था है कि सन्यास के चिन्ह को भी न धारण करे तो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि अव्यक्त लिंगो, हो सकता है कि एक अवस्था आ जाए और वह सन्यास के चिन्ह को धारण नहीं कर रहा है, वस्त्र इत्यादि का ध्यान नहीं रख रहा है, वो अव्यक्त है। अब ऐसा वस्त्र पहनता है, ऐसा उसका व्यवहार है कि पता ही न चलेगा कि किस वर्ण का है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, इससे कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक चीज स्पष्ट होना चाहिए, व्यक्तार्थ सन्यास का चिन्ह धारण करे या न करे कोई बात नहीं, सन्यास के चिन्ह का वो त्याग कर सकता है, लेकिन जो सन्यास का प्रयोजन है तो वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्यक्त अर्थ, सन्यासी को यति कहते हैं, यति का अर्थ है कि जो यत्न में लगा हुआ है, जो यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अरे किस लिए यत्न कर रहा है, सब काम धंधा तो छोड़ दिया है, लेकिन आत्मानुसंधान के लिए, अपने स्वरूप के सिद्धि के लिए जो निरंतर प्रयासरत है, प्रयत्न कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि यह जो उसका प्रयोजन है, लक्ष्य है, तो इसके विषय में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीछे आप लोग सुन चुके हैं, 10 नंबर का श्लोक है, अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो मनीषी उन्मत्त बालवत कबीर मूकवद आत्मानम सदृष्ट्या दर्शय निर्णा। अरे को चिन्ह धारण करके चले बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि सन्यास का चिन्ह भी धारण न करे। और सन्यास का चिन्ह धारण करने से बहुत लोग नमस्कार करते हैं, क्या क्या अपेक्षा रखने लगते हैं, और कभी कभी स्वरूप के अनुसंधान में, आत्मानुवेषण में उससे भी बाधा होने लगती। भक्ति के ने एक साधक के अनर्थ के विषय में आप पढ़ेंगे तो अनर्थ का विभाजन किया गया है कि दुष्कृत से उत्पन्न अनर्थ, कोई बुरा कार्य किए हैं, कर्म किए, उसका संस्कार आता है, चित्त को बाधित करता है, और सुकृत से उत्थ अनर्थ, और कभी कभी जो अच्छा कार्य किए हैं उसका भी संस्कार, उसका भी परिणाम बाधक होता है, और सबसे घातक होता है अपराध से उत्पन्न अनर्थ। वैष्णव का अपराध कर दिए और वो जो अनर्थ आएगा बहुत घातक होता है, और इसके साथ ही भक्ति से उत्थ अनर्थ, भक्ति करते हैं इससे भी कुछ अनर्थ सामने आ जाता है। बहुत लोग सम्मान देने लगते हैं, इनविटेशन देने लगते हैं, तो समय हमेशा वह सहायक ही नहीं होता है। स्त्रियां सेवा की मांग करने लगती है तो ये भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होता है। इतना जरूर है कि जो 3 प्रकार का अनर्थ है, चाहे वह दुष्कृत से उत्त हो, सुकृत से हो, या भक्ति से, इसको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। भक्ति से अनर्थ जरूर है, उपस्थित हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रखें, अपने ऊपर एक आवरण रह करके व्यवहार करें तो भक्ति के अनर्थ है कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, उसको आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है। घातक होता है जो अपराध से अनर्थ उपस्थित हो गया, और उसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है, और कोई बड़ा अपराध हो गया तो बहुत बड़ा परिणाम दिखाता है, भक्ति के ग्राफ को बहुत नीचे गिरा सकता है। किसी बहुत उन्नत वैष्णव का अपराध कर दिए और भाव भक्ति से भी नीचे आ सकते हैं। तो जो हो, हम यह कह रहे हैं कि कभी कभी साधक अपने आश्रम के चिन्ह का भी त्याग कर देता है, अव्यक्त लिंग, और इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन व्यक्तार्थ अपने प्रयोजन पर स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि सन्यास के चिन्ह का गोपन कर दे और अपने को बिल्कुल उन्मत्त पागल लड़के के समान दिखावे। और कबीर मूकवद आत्मानम दृष्ट्या दर्शेन्द्रिणा, अरे कि अच्छा होगा कि समाज में अपने को एकदम पागल जैसा, अज्ञ जैसा, मूर्ख जैसा प्रदर्शित करे, भले ही वो विद्वान हो और खूब चिंतनशील है, मनस्वी है, लेकिन फिर भी अपने को पागल जैसा, मूर्ख जैसा दिखावे। और सन्यासी से यह अपेक्षित है, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए नारद जी कह रहे हैं कि अत्राप उदाहरणतिम इतिहासम पुरातनम प्रहलादस्य च संवादम मुने राजगरस्य च, अरे कि इस सिद्धांत की स्थापना के लिए एक इतिहास उद्धृत किया जाता है, वो इतिहास कन्वर्सेशन संवाद है प्रहलाद महाराज का और अजगर मुनि का। अजगर मुनि जो अजगर के वृत्ति को स्वीकार किया उसको अजगर मुनि कहा जाए। अजगर, अजगर जानते हैं ना, बड़ा सांप होता है, तो अजगर के वृत्ति को धारण करने वाले को अजगर कहा गया। ये दत्तात्रेय जी है, और प्रहलाद जी और दत्तात्रेय में कुछ बातचीत हुआ है और उसको इस विषय में उपस्थित किया जाता है। आप लोग कथा सुन चुके हैं कि एक बार की घटना है कि प्रहलाद महाराज अन्वेषण के लिए, समाज को देखने के लिए अपने मंत्रियों के साथ निकले, एक पर्वत है उसका नाम है सही, कावेरी नदी के तट पर है, तो उसके घाटी में एक व्यक्ति को सोए हुए देखे, उसके शरीर पर धूल जमा था और वह धूल नहीं, उसके शरीर पर धूल था और उस धूल से उसकी जो कांति थी, ब्रह्म तेज था, तो थोड़ा आवृत था, ढका हुआ था, और प्रहलाद महाराज इस अवस्था में देखे कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसके शरीर पर धूल भरा हुआ है, यद्यपि उसका ब्रह्म तेज प्रहलाद महाराज देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धूल के चलते स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। प्रहलाद महाराज तो उस व्यक्ति को पहचान गए, समझ गए, कितना हो धूल से ढका हुआ था, उसके ब्रह्म तेज का वे आकलन कर लिए, और तम नत्वा अभ्यर्च विधिवत पादयो शीर्षा स्पृशन, वे गए उसके चरणों में अपना मस्तक का स्पर्श करके उसको प्रणाम किए और वे उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहे, और उनसे प्रश्न किए, उनसे कुछ सुनना चाहते थे, उनसे कुछ ज्ञान लेना चाहते थे, तो उनसे प्रश्न किए और प्रश्न कर रहे हैं कि आपका शरीर बहुत स्थूल है, मोटा तगड़ा शरीर है, बिल्कुल पुष्ट शरीर है, ऐसा लग रहा है कि कोई धनी व्यक्ति का शरीर हो जिसके पास कार्य करने से, बिजनेस व्यापार करने से, उद्यम करने से धन हो, और जो भोग का सेवन कर रहा हो तो वैसा आपका शरीर दिख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप तो कोई भोग नहीं भोग रहे हैं, आप तो कोई उद्यम नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, चुपचाप यहाँ सोए हुए हैं, तो आपका शरीर इतना स्थूल कैसे है, इतना स्वस्थ कैसे है, आप मोटे ताजे कैसे हैं, इस विषय में हमको आप बतलाइए। और कह रहे हैं कि कभी कल्पो निपुण देख चित्र प्रिय कथा सम लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद विक्षिता पिवा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप तो बड़े विद्वान हैं और दक्ष व्यक्ति हैं, और आपका प्रवचन बहुत सुंदर है, आपकी वाणी बहुत सरस है, और आप सबका हित करने वाले हैं, और आप देख रहे हैं कि संसार के लोग विविध प्रकार के काम में लगे हुए, सब अपने काम धंधा में लगा हुआ है, आप स्पष्ट देख रहे हैं, और आप क्यों चुपचाप सोए हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज का दो प्रश्न है कि आप के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई भोग की सामग्री नहीं है, और फिर भी आपका शरीर बिल्कुल हिष्ट पुष्ट कैसे, और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि सारे संसार के लोग विविध प्रकार के क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, और आप बिल्कुल चुपचाप सोए हुए हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का श्लोक प्रारंभ हो रहा है, और प्रहलाद महाराज के प्रश्न का क्या प्रभाव हुआ दत्तात्रेय जी पर, इसको नारद जी कह रहे हैं। स इत्थम दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयन माहतमभ्याह तद बागा मृत यंत्रित। कह रहे महामुनि दत्तात्रेय जी तो बिल्कुल उद्यम से हीन होकर के सोए थे, पड़े हुए थे, लेकिन स इत्थम दैत्यपतिना परिपृष्ठ, प्रहलाद महाराज जब उनसे ऐसे प्रश्न किए तो स्मयमान वे मुनि ब्राह्मण दत्तात्रेय जी मुस्कुराए, और तमभ्याह उनसे बिल्कुल उनको अभिमुख करके उनके समक्ष उनसे बोले तद बागामृत यंत्रित। वे सब क्रियाकलाप का त्याग कर चुके हैं, चुपचाप सोए हुए हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतना जल्दी कैसे तैयार हो गए, और कह रहे हैं कि अभी आह, प्रहलाद महाराज को अभिमुख करके उनके समक्ष हो करके डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, तो कारण दे रहे हैं तद बागा मृत यंत्रित। प्रहलाद महाराज के वचन इतने मधुर थे और प्रश्न इतना सुंदर है कि उससे वे यंत्रित हो गए, उससे वे बंध गए, और प्रहलाद महाराज के वचन से बंध करके अवे बोलना प्रारंभ किए। तो यह टिप्पणी दे रहे हैं नारद जी। अब दत्तात्रेय जी क्या बोल रहे हैं और उसके विषय में कह रहे हैं कि श्री ब्राह्मण उवाच, दत्तात्रेय जी बोलना प्रारंभ किए, हे असुर श्रेष्ठ भवान आर्य सम्मत। प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, आप तो आर्य सम्मत, आपका जो भी आचरण है तो उसका आर्य लोग अनुमोदन करते हैं, वे उसकी प्रशंसा करते हैं। और भगवान वेद आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इहो परमयो नृणाम पदानि अध्यात्म चक्षुषा। इहा और उपरम, इहा उपरम दो शब्द है, नृणा इहा और उपम, इहा उपरमयो, इहा और उपरम के पदानि उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को आप जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हमको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप मनुष्य के व्यवहार के विषय में पहले से जानते हैं। आपको याद होगा जब प्रहलाद महाराज अपने साथियों को उपदेश देना प्रारंभ किए, उसमें प्रहलाद महाराज के विषय में टिप्पणी किया गया है, तन निष्ठा विद्वान, अपने साथियों के निष्ठा को जान रहे थे, उसको समझ रहे थे। निष्ठा का एक अर्थ यह है कि प्रहलाद महाराज को पता था कि हमारे जो साथी हैं तो हम में श्रद्धा रखते हैं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ यह किया कि तन निष्ठा, अपने साथियों के भविष्य के, उनके फ्यूचर को जानते थे कि अभी तो गुरुकुल में है, अभी हॉस्टल में है, पढ़ाई पूरा करके जाएंगे तो किस कंपनी में जाएंगे, या कंपनी वाले आएंगे यही पैसा का लोभ दे करके ले जाएंगे, कटाएंगे। तन निष्ठा विद्वान, आगे की क्या गति होगी, हमारे साथियों का क्या भविष्य है, वे खूब अच्छा से जानते थे। और यहाँ प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं दत्तात्रेय जी कि नृणाम इहा उपरमयो पदानि वेद। ये मनुष्य इहा मनुष्य के इहा को, इहा का अर्थ होता है चेष्टा, क्रियाकलाप, एक्टिविटी, इच्छा, वासना। इहा नृणाम इहा और उपरमयो, इहा करने से, चेष्टा करने से, कर्म करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होगा, ये कर्म का फल क्या होगा, इसको भी आप जानते हैं। और उपरमयो, इससे उपरत हो जाए, कर्म का त्याग कर दे, विरति को धारण कर ले, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, पदानी मतलब रिजल्ट, उसका फल, इसको भी आप जानते हैं। अरे भाई हम कैसे जान गए, एक अध्यात्म चक्षुषा, मनुष्य क्रियाकलाप में लगा हुआ है, विविध प्रकार का कर्म कर रहा है, तो उसका क्या फल होगा, और जो सब कर्म का त्याग कर दिया है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उसका क्या फल होगा, ये दोनों को आप जानते हैं। कैसे जानते हैं, अध्यात्म चक्षुषा, विवेक दृष्टि से, अंतर दृष्टि से। या एक अर्थ है कि अध्यात्म चक्षुषा, आप मनुष्य के साइकोलॉजी को जानते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के मनोभाव को समझने में दक्ष हैं। तो अध्यात्म चक्षुषा, अपने दृष्टि उसके अध्यात्म डाल करके, उसके अंतःकरण पर डाल करके, उसके अंतःकरण को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके आप समझ जाते हैं। और मनुष्य समाज के चेष्टा को जान करके, उसके साइकोलॉजी को जान करके, उस पर दृष्टि रखने से आप समझ रहे हैं कि कोई मनुष्य कर्म का त्याग करता है या कर्म लगा रहता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज के विशेषता को बतला रहे हैं। प्रहलाद महाराज यह उन्नत स्थिति है कि व्यक्ति के भीतर की बात को भी समझ जाते हैं। वास्तव में कोई कोई व्यक्ति है कि भीतर की बात को समझ जाता है। हम अपनी बात को ठीक से समझे या न समझे, दूसरा समझ जाता है। और केवल हृदय की बात ही नहीं है, शरीर के विषय में भी हम लोग तो कुछ कष्ट अनुभव करते हैं, कुछ कठिनाई होती है, चक्कर आता है, क्या क्या, लेकिन क्या कठिनाई है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को नहीं समझते। लेकिन कोई वैद्य है तो नाड़ी पकड़ करके अब लीवर में क्या गड़बड़ी है, आंत में क्या क्या है, वो सब समझ जाता है। और यही स्थिति मानसिक समस्या के विषय में प्रसिद्ध घटना है कि व्यास देव बड़े भारी असंतोष में थे। वे विचार कर रहे थे कि हमारा जीवन दूसरे के उपकार के लिए बीत गया, तो समाज के लिए मैं बहुत बहुत कार्य किया, और समाज के लिए किया और अपना आचरण ठीक नहीं रखेगा तो फिर भी शोक होगा, प्रसन्नता थोड़े होगी। और व्यास देव कह रहे हैं कि ना, हम तो अग्निहोत्र इत्यादि का नियम या जो भी हमारा व्यक्तिगत नियम है उसका भी पालन किया, इसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे हृदय में असंतोष कैसे। वे कुछ कुछ अनुमान कर रहे थे कि शायद भगवान के गुणों का निरूपण नहीं किया, अनुमान कुछ कर रहे थे। तब तक वहां नारद जी आ गए और नारद जी से सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे असंतोष का कारण आप बतलाइए। हृदय हमारे असंतोष हमारे हृदय में है, और प्रश्न सीधे नारद जी से किए और नारद जी उसका उत्तर दिए। यह कोई नवीन बात नहीं, ऐसा होता है, कठिनाई हमारे शरीर में है और वैद्य उसका कारण बतला देता है। और प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि मनुष्यों की क्या स्थिति होगी, वे कर्म करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा, कर्म का त्याग करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा, आप पहले से ही जानते। अध्यात्म चक्षुषा, आप अध्यात्म दृष्टि से बड़े उन्नत व्यक्ति हैं और मनुष्य के कर्म करने के फल को, कर्म त्यागने के फल को आप जानते हैं। तो हम लोगों का विषय इतना ही है, लेकिन बहुत भारी कौतुक मन में होगा कि आखिर क्या रिजल्ट होता है। और जब प्रहलाद महाराज जानते ही है तो क्या दत्तात्रेय जी उत्तर नहीं दिए, कहें कि ना आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको आपसे बात करूंगा, हम आपको कुछ बतलाऊंगा, क्योंकि आपसे बात करने से हमारी शुद्धि हो जाएगी। तो आपको ज्ञान देने के लिए नहीं, अपने शुद्धि के लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। और वे उत्तर दिए कि देखिए, हम दुनिया को देख लिए, दुनिया में क्या होता है वो हमको वे पता चल गया। वे कह रहे हैं कि तृष्णया भववाहिन्या जोगह कामैर पूरया कर्माणि कार्य माणो हम नाना जोनि से योजित। अरे भाई, अब देखा जाए बायोडाटा, पीछे का हिस्ट्री देखा जाए तो हमारी क्या स्थिति हुई है। अपने विषय में कह रहे दत्तात्रेय जी कि तृष्णया भव वाहिन्य जोगह कामर पूरया कर्माणी कार्य माणो हम, हम बहुत बहुत कार्य किए, अभी थोड़े दिन से मैं ये चुपचाप बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दिन से काम छोड़े हैं, अरे हम तो अनेक जन्म तक क्रियाकलाप में लगे रहे। कार्य मानो हम बहुत बहुत कार्य किए, वे काम क्यों कर रहे हैं तो उसका मूल कारण है तृष्णया। तृष्णा है, वासना है, भोग की लालसा है, और उसके लिए तो भोग का साधन चाहिए और भोग के साधन के लिए कार्य करना पड़ता है। वे पैसा जुटाएंगे तब भोग का साधन मिलेगा, तो कह रहे हैं कि हम बहुत बहुत जोनी में अनेक जीवन में ऐसा किया और बहुत सारा भोग भी प्राप्त कर लिया, योग्य ही, और जो उचित भोग है वैसा भोग प्राप्त किया, लेकिन काम अपूरया, वो कितना हो उचित भोग हो हमारे कामना को संतुष्ट नहीं कर पाए। भोग व्यक्ति कितना भी प्रदान करता है वो कामना का अंत नहीं होना है, तृष्णा का अंत नहीं होना है। वो भोग देने से तृष्णा का अंत तो नहीं होता है, लेकिन उसका रिजल्ट आ जाता है भव वाहिन्य। जब तक तृष्णा बना है तो जन्म मृत्यु की संस्कृति नहीं रुक सकती। तृष्णा है तो कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो उसका बंधन आएगा, उसको काटने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम तो अनेक जन्मों तक ऐसा किए, लेकिन अब संजोग की बात है, लोग पर विचार करके और खास करके दो व्यक्ति के आचरण पर विचार करने से हमको वैराग्य हो गया, और तो इसलिए मैं संतोष धारण करके बैठा। तो जो बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय जी, वो तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तृष्णया भव वाहिन्य। ये जो हमारा भव प्रवाह चल रहा है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला चल रही है, तो उसका मूल कारण है तृष्णा। बलि महाराज के समक्ष भगवान भी इस सिद्धांत को दिए। बलि महाराज कहे कि तीन देख, ये क्या मांग रहे हो, मांगना है तो थोड़ा अधिक मांगो, अरे कम से कम इतना तो जरूर मांग लो कि फिर दूसरे से न मांगना पड़े, जीवन भर तुम्हारा काम चले। बामन देव कहने लगे कि ना, जो तीन देख से संतुष्ट नहीं होगा तो उसको सातों द्वीप मिल जाए नौ वर्ष समेत, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होगी। और ये असंतोष बड़ा घातक है, संस्कृतर हेतु, ये जो पुंसो यम असंतोष, ये जो व्यक्ति का असंतोष है यही जन्म मृत्यु का कारण है, और संतोष मुक्त स्मृत। व्यक्ति जो संसाधन सुलभ है उसी में संतुष्ट रहे तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। ये कह रहे कि असंतोष है, जो तृष्णा है, तो उसके चलते मैं नाना जोनी में भ्रमण करते रहा, और संयोग से मैं देखा कि जो मधुमक्खी हैं और कितना यत्न से मधु का संग्रह करती हैं, थोड़ा थोड़ा जुटा करके, और तब तक मधुआ आता है और सब को मध को ले जाता है, और मध को भी ले जाता है और मक्खियों का जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो संग्रह करने का तो यही पद है, यही रिजल्ट होता है। व्यक्ति बहुत बहुत प्रयास करके धन का संग्रह करता है, और धन का संग्रह कर लिया तो उसकी स्थिति होती है कि सब जगह से उसके मन में भय छा जाता है, चोर का भय, राजा का भय, स्वजन का भय, अरे चिंता अपने तरफ से रहती है कि कहीं महंगा सौदा न हो जाए, बहुत रेट देखता रहता है। उसकी यह स्थिति हो जाती है कि ठीक से सो नहीं पाता है, और कभी कभी जीवन पर भी खतरा हो जाता है। तो हम तो मधुमक्खियों के व्यवहार को, मधुआ के व्यवहार को देख करके वैराग्य धारण कर ली, और अजगर को देख करके संतोष धारण कर ली। वो अजगर है तो कोई प्रयास नहीं करता है, पड़ा रहता है, जो उसके रेंज में आ गया तो उसको निगल जाता है। कोई बहुत कुत्ता जैसा दौड़ता नहीं रहता है भोजन के लिए, चुपचाप पड़ा है, संयोग से आ गया तो उसको निर्वाह कर लेता है। तो उससे मैं संतोष सीखा, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तृष्णा का त्याग और संतोष का धारण करना। कोई कोई प्रश्न करेगा, आखिर कैसे तृष्णा का त्याग होगा। भगवान से भी उद्धव जी प्रश्न किए, भगवान उत्तर दिए हैं कि प्रायण मनुजा लोक के लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरंत यात्मानम आत्मनैवा अशुभाशयात। ये तृष्णा का त्याग अपनी जिम्मेवारी है, जरूर है दूसरा सहायता करेगा, गुरु के आशीर्वाद का बहुत भारी महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल अपना है। जब तक अपना कुछ पूंजी नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वे अपने से कैसे व्यक्ति वैराग्य ले लेगा। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया स्वप्ने निरुक्त्या, सपना में क्या क्या भोग क्या क्या सुविधा प्राप्त कर जाते हैं उसमें है बुद्धि करने के लिए किसी कोचिंग में जाना पड़ता है, अपने से है बुद्धि कर देते हैं ना, तो वही सिद्धांत लागू होगा। तो कह रहे हैं कि प्रायः प्रायः मनुष्य जो लोक पर विचार करते हैं संसार पर विचार करते हैं तो अपने से उस वासना से उपरत हो जाते हैं। यह अपना कर्तव्य है। इस विषय में बहुत बहुत चर्चा श्रीमद् भागवतम में है। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसको तृष्णा का त्याग करना होता है, और जितना जल्दी त्याग कर दे उतना अच्छा है, क्योंकि अपने से काल के प्रभाव से या उम्र के प्रभाव से तृष्णा का त्याग नहीं हो पाता। और त्याग की बात तो दूर है, उसमें ह्रास भी नहीं होता, उसमें कमी भी नहीं होती है। इसी से जजाति महाराज सिद्धांत दिए हैं, या दुस्त्यजा दुर्मति भी जिर्यतो या न जिर्यते। और तृष्णा को त्याग करना बहुत कठिन है, जो अविवेकी हैं उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन एक चीज जान लेना चाहिए कि समय बीत रहा है, हम भले ही बूढ़े हो जाएं, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, वो कमजोर नहीं होती है। और जो समय के बीतने से कमजोर नहीं होने वाली है, और दुख निवहा इतना जरूर है कि तृष्णा है तो दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए जो व्यक्ति शांति चाह रहे हैं, शर्म काम द्रुतम त्यजेत, शांति चाह रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है अपना विवेक होना चाहिए कि यथाशीघ्र तृष्णा का त्याग कर दे। अभी कैसे त्याग होगा, थोड़ा संसार पर विचार कीजिए, बात समझ में आ जाएगी। संसार पर विचार करने से बात समझ में आ जाती है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके भी पूर्वज सब तो दंपति कुरुवते क्रिया, वे स्त्री पुरुष का जोड़ी बांध करके सब सुख को प्राप्त करना चाहे, सब दुख को समाप्त करना चाहे, क्या हो पाया? और कई एक जनरेशन के लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हम कैसे कर देंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। और ये संसार की पद्धति है, इससे सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, अपना मेथड बदलना होगा। और यह जब विवेक आ जाए तब गुरु की सहायता लेकर के भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करने से व्यक्ति माया को आसानी से पार कर जाता। तो यह सिद्धांत है। यहाँ प्रहलाद महाराज के व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई है और दत्तात्रेय जी प्रहलाद महाराज के उत्तर को देना प्रारंभ किए। और क्या क्या उत्तर दे रहे हैं इसको एक एक श्लोक करके हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।